क्या हुआ, कुछ मिला हमें?
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। अदालत के बाद उसने कोई काम भी नहीं किया। देखो बाहर आ रहा है, तुम्हारे हवाले।
जी ठीक है।
ताकुब को छोड़ दें, जरा एक अरसे तक इसे अपने हाल पर रहने दो।
टेप करने के सामान और आलात को भी समेट लें?
फिलहाल नहीं, जब तक मैं खुद न बताऊं। लेकिन वैन को हवाले करो, साथियों से कोई जाकर आराम करें।
जी अच्छा।
क्या करूं जनाब, ये बच तो जाएगा ना? क्यों इसने ये काम किया है? इसने ये गोलियां खाई हैं बहुत ज्यादा।
खुदकुशी का ये केस आया है। खुदकुशी का ये केस आया है।
हाँ, किस पर से मत उठाना, एक मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए मुझे।
जरूर।
डॉक्टर हुसैनी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर हुसैनी,
15 साल से मैं इस हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही हूँ। कोई चीज खुदकुशी से ज्यादा सख्त मैंने नहीं देखी। हाँ, ये बात की दवाओं के लिस्ट को अलग कर दो।
तुम चाहती तो जाकर आराम कर लो।
नहीं, मुझे सुकून नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। अफसाना, वो भी इस सूरत हाल के साथ जो इस बदनसीब को ले आए हैं। वो इस बात से नाराज है कि उसको बचा लिया गया।
मेरे की धुलाई और रिकवरी के बाद वो होश में नहीं आया?
सुकून आवर गोलियों की वजह से बेहतर है। बेचारा इंसान रह जाता है लोगों के काम में।
इंसानों का मरना तो आसान ही होता, खास तौर पर जब कोई शख्स अपने आप को मार दे। लो ये रही दवाओं की लिस्ट।
तुम्हारी मेहरबानी। तुम चाहो तो जाकर जरा आराम कर लो, बहुत थकी हूँ।
मैं स्ट्रेल के सामान तैयार करूँ, किसी चीज की कमी बेशी ना रहे, फिर जाकर जरा आराम करूंगी और फिर मैं जाऊंगी फूलों की मार्केट फूल खरीदने।
खुश नसीब हो तुम, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह जवानी और तवानाई रखती।
काश मैं तुम्हारी तरह तजुर्बेकार होती।
ए बाद हम यहाँ क्यों हैं? हिम्मत कैसे हुई?
क्या मतलब?
क्यों हमारे कामों में दखल देते हो?
मरने के लिए छोड़
क्यों दखल देते हो तुम?
यहाँ क्या
कैसी बात कर रहे हो तुम?
हमें मरने देते?
क्यों तुम्हें मरने देते?
समझ नहीं पा रहे हो? क्यों हमें मरने नहीं दिया तुमने?
आप बाहर जाइए, हम यहाँ
से। मैंने उसे छोड़ दिया था इसलिए उसने अपने साथ ऐसा किया। क्या मुझे उसको मरने देना चाहिए था?
नहीं, आपने एक सही काम किया है। उसने क्यों खुदकुशी की आपको पता है?
प्यार मोहब्बत। कभी कोई शख्स खुद को गुर्बत की वजह से मुसीबत में फंसा देता है और कोई इसकी तरह पेट भरे होने के सबब। मैं नहीं चाहता इसकी बुराई करूं। जब वो छोटा बच्चा था मैं उसके बाप के अच्छे शान शौकत माहौल में रहा हूं। उसके पास पैसे और दौलत आसाइश में कमी नहीं है, मतलब यह है कम होने नहीं दी गई।
आप खुद कहते हैं प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत तो इन चीजों की परवाह नहीं करता है।
इंसान को अपने बराबर की लड़की और लड़के के साथ जोड़ रखना चाहिए। उसकी आवाज नहीं आ रही है, मैं जाता हूँ उसके पास, मेरा दिल घबरा रहा है।
नहीं, आप बैठ जाइए, उसको सुकून आवर दवा दी गई है। अगर वो अभी दोबारा आपको देखेगा तो फिर गुस्से में आ जाएगा।
यह रहा एक उम्र तक खिदमत करने का मेरा सिला। उससे सोचा क्योंकि वह पैसे वाला है, ना नहीं सुनेगा। उस लड़की ने उसको ना में जवाब दिया। मेहरदाद का बाप भी मुखालिफ था, جب وہ چلے گئے ملک سے باہر اسٹے اور بزنس کے پیچھے تو اس کے باپ نے سوچا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور مہداد بھی پرسکون ہو گیا ہے اور اس کے سر سے اس لڑکی کا بھوت اتر گیا ہے. میں رہ گیا ہوں اور مہداد. جب اس نے سنا کہ لڑکی نے شادی کر لی ہے تو وہ ایک عرصہ غم سے نڈال رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے سر پر یہ بلا نازل کی.
آپ نے اس کے ماں باپ کو اطلاع دی ہے؟
نہیں, کیا بتاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بتا دوں گا. جب میں اس کے باپ کا نام لیتا ہوں تو وہ بری طرح سے غصے میں آ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کے باپ کی مخالفت کی وجہ سے سب کچھ بگڑا ہے.
اب سو گیا ہے, بہتر حالت ہے.
میں اس کے پاس جا سکتا ہوں؟
ہمارا دھیان اس کی طرف ہے, آپ بھی ذرا آرام کر لیجیے, پریشان مت ہوئیے.
فی الحال تو اسے مجھے دیکھ کر غصہ آتا ہے. اگر میں ذرا دور رہوں تو ہو سکتا ہے میرے اوپر اس کے غصے کی آگ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے. نرسیں اس کے پاس ہیں, خدا کے حوالے.
اچھا دیکھو تو ذرا,
مانیٹر آن کرو. مونا احترامی, تہران یونیورسٹی اس پورے عرصے میں جو آزاد میرے ہاسپٹل میں موجود رہی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے ان ہاسپٹلوں کا ریکارڈ کا جائزہ لیا. جہاں وہ پہلے کام کرتی تھیں وہاں بھی ایک فرض نرس تھی. اگلی تصویر, ناصر کمالی. غلط ریکارڈ کا حامل نہیں, اس کا پیشہ ہمیشہ ڈرائیور تھا. پیرا میڈیکل اور فرسٹ ایڈ کا کورس کیا, اس کے بعد ڈرائیور کے طور پر ملازمت پر رکھ لیا گیا. ہمیں کسی قسم کا رابطہ اس کے اور راہ روشن انسٹیٹیوٹ اور خرامان کے درمیان نہیں ملا, لیکن معلوم ہوا ہے کہ یہ ناصر تھا جو منصور اور نگار کو اپنے ساتھ آزاد مہر ہاسپٹل لے کر آیا تھا.
یہ آدمی فی الحال زیر کنٹرول ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اسے بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. اگر اسے تھوڑا سا بھی شک ہوا تو ہم باقیوں کو بھی گوا دیں گے.
عباد کے چلے جانے کے بعد کوئی خاص بات نہیں تھی. کئی مرتبہ نرس احترامی سے آئی اور چلی گئی, اور ایک دو مرتبہ افسانے اقتصابی اور وہ اسسٹنٹ پیرامیڈک کمرے میں گئی. روٹین کے کاموں کو اس نے انجام دیا اور باہر چلی گئی.
اسسٹنٹ پیرامیڈک,
افسانہ اقتصابی, وارڈ میں مشہور ہے. سب کے ساتھ پیار سے پیش آتی ہے, سب کا خیال رکھتے, بیمار ان کے ساتھ رہنے والے سب لوگ.
کل رات بھی یہ بات کو اس نے تسلی دی اور گھر بھیج دیا تھا.
اس کا کام نرسنگ نہیں ہے, مدد کرنا ہے. اس کے ٹرانسفر فائل پر کام کر رہے ہیں. صبح البرز میں علاج معالجے کے ایک چھوٹے سے مرکز سے آئی ہے, ضلع قائن میں پلی بڑھی ہے.
جب تک مہداد ڈسچارج نہیں ہو جاتا ہاسپٹل سے نظریں نہ ہٹانا. یہ ڈومینو اگر طے ہے کہ بکھر جائے تو ضرور ہاسپٹل سے شروع ہوگا.
ہاسپٹل کا ڈائریکٹر بھی میرے خیال میں ذرا چکرایا ہوا تھا.
میں خود اس سے بات کروں گا.
ہٹاؤ مت.
کیوں؟
اندھیرا اچھا ہوتا ہے.
روشنی تمہاری آنکھوں میں نہ پڑی.
بند کر دو.
کل بھی تم نے کہا تھا, بیجا میں نے تمہاری بات سنی. تمہیں اچھا لگتا ہے؟
مجھے اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی.
بڑے ہی بد اخلاق ہو تم. کیوں؟ اپنی رائے بدل دو. روشنی کو اندر آنے دو تاکہ تم اپنے آپ کو دیکھ سکو.
میں خود کو دیکھ سکوں؟
کبھی بھی اپنے آپ کو کم مت سمجھو.
تم کیا مجھے جانتی ہو؟
فرض کرو کہ میں جانتی ہوں.
تمہارا کام یہی ہے.
अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो मैं उठा लूंगी।
उठाना ही चाहते थे तो रखा क्यों?
इसलिए कि जब इंसान खूबसूरती को देखता है तो खूबसूरत सोच सकता है।
जरूर, इस सूरत में फिर वो खुदकुशी नहीं करता।
इसकी एक वजह यही है।
और दूसरी वजह?
जाती है।
ये तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं?
जी। इन दो दिनों में हॉस्पिटल के पूरे अमले ने इंतहाई तावुन किया है।
जी, मुझे पता है, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका।
सिर्फ मैंने अपने शुरकाओं को अभी तक कुछ नहीं बताया है। मुझे हॉस्पिटल की बदनामी से डर लगता है।
इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए अफसोस से कहना पड़ता है कि ये थोड़ा पेचीदा और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। आपकी मदद अब तक बहुत मौसर थी। बहरहाल, हमारे लिए भी अपने फर्ज के मुताबिक लोगों की सिक्योरिटी अहमियत रखती है, खास तौर पर इलाज और मेडिकल स्टाफ जैसे अहम मौजू के मामले में।
आपकी बातें मेरे लिए हौसला अफजाई का बायस हैं। सिर्फ ये कि मैं अपने साथियों से कहूं कि ये मौजू कितने दिन और जारी रहेगा। ठीक है, मैं खुद उनसे बात करता हूं।
मैं मशकूर हूं आपका।
कोई मशकूक आमदरफ्त नहीं है उसकी। हर रोज़ फूलों के मार्केट जाती है। उसका रास्ता भी घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर है। जिन दिनों उसकी शिफ्ट नहीं होती है, एक आम सी जिंदगी है उसकी, शॉपिंग और थोड़ी सी चहलकदमी। उसके कोई करीबी दोस्त नहीं है। उसकी कुलीग्स कहती हैं कि तमाम बीमारों के साथ इसी तरह पेश आती है।
इतनी नर्मदी लड़की क्यों इस हद तक इतनी अकेली है?
हटाओ मत।
जाग रहे हो?
मैंने कहा हटाओ मत।
आज का दिन दूसरे दिनों से क्या फर्क लगता है? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा।
फर्क करता है, आज मुझे मरे हुए 5 दिन होने चाहिए।
क्यों इस तरह कहते हो? कहो अभी 5 दिन है कि मैं जिंदा हूँ।
मेरे जिंदा या मुर्दा होने से किसको फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है, रहूं या ना रहूं? कुछ नहीं, 5 दिनों से यहाँ हूं, कोई भी नहीं आया मेरे पास।
इबाद?
अब उसका नाम मत लेना।
क्यों? इसलिए कि उसने तुम्हें बचाया है?
उसने मुझे बचाया किससे? मौत से? मरने को तो मैंने खुद इंतखाब किया था।
तुम समझते हो मरने के जरिए से तुम माजी से भाग सकते हो?
कमबख्त ने अगर मुदाखलत न की होती, इस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता।
तुमने सोचा आसान है?
जब तक मैंने गोलियां नहीं खाई थी, मैं समझता था मुश्किल है, लेकिन अब कहता हूँ आसान।
मरना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी बसर करना मरने से भी ज्यादा सख्त है। इसलिए तुमने आसान रास्ता चुना है और उसकी तरफ चले गए।
तुम खुश नसीबों के सख्त रास्ते का इंतखाब किया है तुमने। तुम जी रही हो, मेरी और मेरी तरह के लोगों की खिदमत कर रही हो, रहमदिली कर रही हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फूल देने वाली खातून।
तो क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने भी एक मर्तबा खुदकुशी की है, 3 साल पहले। मैंने अपने हाथों की शहरक काट दी थी, मेरे दोनों हाथों की।
यह अफसाना आधी जमीन के नीचे है। वैसे
उसके रिकॉर्ड में तो कोई भी तस्करा उसकी खुदकुशी का नहीं हुआ है।
थक गई थी सब चीजों से। तुम्हें मालूम है कि थक जाना क्या है तेहरान में, अजनबी शहर में, छोटी शहर से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के लिए। मुझे प्यार हुआ था तुम्हारी तरह।
मेरा तो कोई सही माकूल बाप भी नहीं था। मैंने सोचा कि वो एक बहादुर लड़का है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खातिर खो दी, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सकी। उसने मेरा गलत फायदा उठाया और फिर अचानक रफू चक्कर हो गया। मेरे बाबा तो मेरे माँ के तुफैली बने रहे थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि घर वापस जाऊं। कुछ अरसा बेघर, कुछ अरसा नशा, और उसके बाद तो
उसके बाद क्या हुआ? तुम यहां कैसे आई?
अगर मैंने तुम्हें बताया है तो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे चले हुए रास्ते पर मैं चल चुकी हूं। तुम पूछते हो इसके बाद क्या? मैं कहती हूं उसके बाद जबरदस्त। तुम पूछते हो इस वक्त? इस वक्त मैं रूए जमीन की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं। तुम पूछते हो यहां? और मैं यहां हूं ताकि अपने जैसे इंसानों की खिदमत करूं। मैं यहां हूं क्योंकि मैंने जिंदगी गुजारना सीख लिया है। अब मुझे अपना प्यार मिल गया है, उन इंसानों की देखभाल जो अपना प्यार नहीं पा सके, तुम जैसे इंसानों की।
अकेले नहीं हो सकता। मैंने भी अपना हाथ दिया एक शख्स के हाथ में जिसको रास्ते पर चलना आता था।
किसे? एक नए प्यार को?
मैं अपनी नई जिंदगी में उस्ताद शम्स की मरहूने मिन्नत हूँ। जो कुछ मेरे पास है वो उनकी वजह से है। पर्दा खींच दूं? तुमने कहा था ना कि खींच दूं मैं।
तुम्हारे लिए क्या किया उसने?
ये पूछो कि उस्ताद शम्स ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया,
अपनी जिंदगी का पर्दा खींचना सिखाया। तुम भी अगर मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का पर्दा खींच दो, अपनी सोच तब्दील कर दो, अपनी निगाह तब्दील करो। इस सूरत में तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी।
मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, मुझे मर्जी नजरी साबित करना है।
यहाँ से अंदर तशरीफ ले जाएं, आखिरी हाल में।
एक्सक्यूज मी, मुझे नजरी साबित से काम था।
वहाँ तशरीफ ले जाइए।
यहाँ इस तरह तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने इस काम को शुरू किया है, मैं मैनेजर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ खुद भी काम करूँ।
ज़ाफ़रान की खुशबू अच्छी है, लेकिन ज्यादा होना तकलीफ देह है। आपको तकलीफ नहीं देती?
आदत हो गई है
जी। यहाँ लिखा हुआ कि आपके शोहर करीम इक्तसाबी साहब हुकूमत से बेरोजगारी फंड लेते हैं।
अपनी सुस्ती का बीमा लेते हैं। मैं काम करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, और वो फारग़-उल-बाल है। उसको पता है कि उसके दो बच्चों की आसानी के साथ देखभाल हो रही है, किसी चीज की भी उनको जरूरत नहीं है।
यहाँ लिखा हुआ है तीन अफराद, अमीर अली, आरजू, अफसाना। तो क्या ये सब आपके साथ नहीं रहते?
नहीं, अफसाना अपने लिए काम करती है। इब्तिदा में वो भी मालिच थी एक डिस्पेंसरी में, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो चली गई है तहरान किसी हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में या किसी और जगह पर।
यानी आपको यकीन नहीं है? उसकी कोई खबर नहीं आपके पास?
उसकी शान में नहीं है कि वो हमारी खैरियत पूछे। कभी एक फोन करती है। क्या अफसाना भी इंश्योरेंस करवा सकती है मेरी तरफ से?
क्या उसे अपने काम करने वाली जगह से इंश्योरेंस नहीं मिली हुई?
मुझे नहीं पता है। पहले जब कभी आ जाती थी कायन तो अपने बारे में चार बातें करती थी, लेकिन अब तो बहुत अरसा हो रहा है कि नहीं आई है। और कई बार जब मैं गई थी उसकी खैर खबर लेने तो मेरा जाना उसको अच्छा नहीं लगा। मेज़बान को मेहमान का एहतराम ज़रूर करना चाहिए। आखिरी मरतबा जब मैं उसकी खबर लेने गई तो मुझे इत्तला दिए बगैर उसने अपनी जगह बदल ली थी। लीजिए।
आपकी मेहरबानी। कितने से आप उसे बेखबर हैं?
एक साल से ज़्यादा हो गया है।
तो फिर क्यों अब आप चाहती हैं कि उसका नाम आपकी इंश्योरेंस के साथ अटैच हो?
میری اولاد ہے، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ خود سمجھتی ہے کہ اس کی بدقسمتی کی وجہ میں اور اس کے باپ ہیں۔
کیوں آپ؟
اس کا باپ ہمیشہ نشے میں رہتا ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں کیوں اس طرح کے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں رہ گئی ہوں، میں ہوں اور یہ تین چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب بھی وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہاری پوری زندگی ہو گئی ہے صرف پیسہ اور کام۔ افسانہ بہت سیدھی سادی ہے، بہت بھولی ہے، معاف کیجیے گا لیکن بالکل بیوقوف ہے۔ سوچتی تھی اب چلی جائے گی تہران تو ایک اور انسان بن جائے گی، کچھ زیادہ ہی غرور اور گھمنڈ بھی ہے اس میں، میں اس کو جانے سے نہیں روک سکی۔ لیکن میں ماں ہوں، اس کو جانتی ہوں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی ہے، اعتراض کرتی رہتی ہے، لیکن رحم دل ہے، بہت رحم دل۔ میں تو 24 گھنٹے اسی ورکشاپ میں ہوتی ہوں اور اس کے ابو بھی ایسے ہیں۔ ہم اچھی طرح افسانہ کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آ سکے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک اچھا کام ملا ہے مجھے، لیکن اگر اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو تو ٹھیک بھی ہے، وہ جلدی یقین کر لیتی ہے، پھر بھی اگر میری طرف سے انشورنس ہو جائے تو میں بے فکر ہو جاؤں گی۔
ٹھیک ہے، میں اس کا نام ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی انشورنس کی کاپی میں۔
خدا آپ کا بھلا کرے۔ زعفران دے دوں آپ کو؟
نہیں نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
کائن شہر سے کب واپس آئے؟
ابھی اسی وقت۔
جانے آنے کا فائدہ بھی ہوا کچھ؟
اس کیس میں ایک طرف ہم ہیں اور اس طرف نہ جاسوس ہے، نہ دہشت گرد ہے، نہ تخریب کار ہے۔ اس طرف ایسے لوگ کھڑے ہیں جو انسانوں کی روح پر سوار ہوتے ہیں، وہ لوگ انسانوں سے غلام بناتے ہیں۔ افسانہ کہتی ہے استاد استاد، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ استاد اس کے روح اور روان پر سوار ہے۔ مجھے دے دو یہ، میں جب تک افسانہ کو نہ پہچانوں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ استاد شمس اور استاد شمس کی طرح کے دوسرے لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں۔ فائدہ مند تھا۔ کوئی بھی شخص ماں کی طرح اپنے بچے کو نہیں پہچانتا۔ 1 سال ہو گیا، افسانہ نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا اپنے گھر میں، اور اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا کافی برسوں تک۔ لیکن اس کی ماں اپنی بچی کے انشورنس کے لیے فکر مند ہے۔ ایسا کیا ہے کہ استاد شمس آتا ہے اور ایک ماں کی جگہ لے لیتا ہے؟
آپ نے جب فون کر کے بتایا کہ ڈسپنسری اشتہارد میں ہے تو ہم اسی وقت ٹارگٹ کے پیچھے چلے گئے تھے۔ یہ رہی ڈسپنسری کی تصاویر، دیکھ لیجئے، آج شام کی ہیں۔
ہم ڈیٹیکٹیو کی بھیس میں گئے وہاں، ان کا تعاون اچھا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ افسانہ نے تقریباً 2 سال پہلے کچھ 6 مہینے وہاں کام کیا ہے۔ وہاں کسی کو اس کی خودکشی کا علم نہیں تھا۔ صرف ایک بات سمجھ میں آئی کہ ڈسپنسری کو راہ روشن انسٹیٹیوٹ نے سامان دیے تھے۔
مہرداد کے ساتھ افسانہ کی پہلی گفتگو کے بعد میں نے ساتھیوں کو بھیجا تاکہ وہ افسانہ کو زیر کنٹرول لیں۔
نتیجہ؟
وہ کل ملا کر 3 جگہوں پر گئی ہے، گھر، ہاسپٹل اور پھولوں کی مارکیٹ۔ بس یہی۔
ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ ذرا جلدی چلی جائے اپنے استاد کے پاس۔
صبر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مہرداد کیا چاہتا ہے۔ یہ اس عرصے کے دوران کے مکالمے ہیں افسانہ اور مہرداد کے، اس کے اضافوں کو ہم نے کاٹ دیا ہے۔ یہ شمس سے متعلق افسانے کی باتوں کی رپورٹ۔
حد سے زیادہ رحم دل ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں دل سوز ہے، مدد کرنے والے ہیں، تمہاری باتوں کو غور سے سنیں گے، تیز بین ہے اور ان کا قوہ ادراک اعلیٰ ہے۔ تم بات بھی نہ کرو تو بھی وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔
یہ بات وہ سچ کہہ رہی ہے۔
غلطی ان کو بری لگتی ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ وہ کوئی غلطی کر دے۔
ये इसने झूठ कहा है। फिरकों के सरगने जितना भी टेक्निक में अच्छा अमल करते हैं, हिकमत अमली में बहुत सुस्त होते हैं।
वो सच्चाई से भरे हुए हम सबसे भी यही चाहते हैं।
फिरके अपने पैरों को सिखाते हैं कि वो फिरकों के अंदर सच्चे रहें, लेकिन फिरका से बाहर ऐसे नहीं रहें।
बस काफी है कि तुम उन पर एतमाद करो ताकि उनके साथ पुरसकून रहो, वो तमाम मसाइल को हल कर देंगे।
बड़े मसाइल के हल के लिए वो छोटे रास्ते दिखाते हैं, लेकिन छोटे मसाइल को हद से ज्यादा बढ़ा कर दिखाते हैं ताकि तुम्हारे ज़हन को मुंतशिर करें।
पुरसकून रहते हैं, हमेशा कहते हैं मैं भी एक हूँ तुम लोगों की तरह।
कितना अच्छा है वो परिंदा जो पिंजरे के एक कोने में अपनी सयाद की याद में बैठा रहे, इस तरह खुश खुरम बैठा रहे कि लोग सोचें कि वो आज़ाद है। माँ के कहने के मुताबिक वो सादा लो जल्दी यकीन करने वाली मगरूर और मेहरबान है, ऐसी मेहरबान जिसने मेहरबानी नहीं दे ही देखी है। इंश्योरेंस वालों को फ़ोन करो, कह दो कि अफसाना को इसकी माँ की फहरिस्त में ऐड कर दें, मैंने इसकी माँ से वादा किया है।
ये भी सुनिए सर,
ये उस्ताद शम्स जिसकी तुम तारीफ कर रही हो मर्द है या औरत है?
तुम्हारे लिए कोई फर्क पड़ता है क्या?
नहीं, लेकिन बहरहाल अगर एक खातून हो तो मैं कैसे कहूँ, मुश्किल से अपनी बातें उससे कह सकूँगा।
तुम बेफिक्र रहो, सिर्फ काफ़ी है कि एक बार उनसे मिल लो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम सूरज को देखने चाहो लेकिन देख ना सको?
नहीं, तो क्या हो सकता है कि सूरज की तरफ देखा भी जा सके?
हाँ, मैं एक शख्स को जानती हूँ जो सूरज से गुजर सकता है, ऐसे शख्स को जो जैसे सूरज से बना हो। शायद तुम कहो मैं बड़ा जगह के कह रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि सूरज भी उनके सामने ताजीम करेगा। मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि खुदा के वजूद पर शक किया जा सकता है क्योंकि उसे नहीं देख सकते, लेकिन अपने उस्ताद पर शक नहीं कर सकती क्योंकि जब भी मैं चाहूँ उन्हें देख सकती हूँ।
कैसे मैं सूरज को जो तुम कह रही हो देख सकता हूँ? तुम्हारे उस्ताद को क्या तुम नहीं कहती हो कि वो शफा बख्श है? क्या हो सकता है कि वो एकदम से मुझे शफा दे दें?
तुम उस वक्त उनको देख सकते हो जब उन पर तुम्हारा ईमान हो, न कि शक व शुबह का इजहार करो।
अफसाना प्लीज मुझे भी अपनी तरह निजात दिलाओ, मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है।
इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें अपनी राय को बदलना पड़ेगा, उस्ताद को देखने के लिए लियाकत की जरूरत है।
लियाकत का तो मुझे पता नहीं है कि मैं रखता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि शिद्दत के साथ मुझे मदद की जरूरत है।
उनके साथ बात करती हूँ, खुद उस्ताद फैसला करेंगे।
क्या है, क्यों तुम लोग ऐसे मुझे देख रहे हो? तो क्या तुम इसी बात के इंतजार में थे? हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अफसाना शम्स को मना ले। हाँ, अरे जल्दी करो, मुकम्मल एक फिरके से हमारा पाला पड़ा है, जल्दी करो जल्दी करो।
क्या हुआ?
सब्र से काम लो, मुझे खुद कई महीने लगे ताकि उस्ताद शम्स से मिल सकूं।
मेरी हालत के बारे में बताया है उन्हें?
मैंने बता दिया, मुझसे और तुमसे बदतर बहुत से लोग हैं, उस्ताद हर एक शख्स से नहीं मिल सकते।
एक ग्लास पानी लाओ, गोलियां खा लूं।
इन फजूल की चीज़ों को मत खाओ, तुम्हें ठीक तो करेंगी नहीं, बदतर और बिगाड़ देंगी।
मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, दोबारा खुदकुशी कर लूँगा।
ठीक है, दोबारा मैं अपने उस्ताद से कहूँगी, सिर्फ तुम पागलपना मत दिखाओ।
जितनी वो इल्तिजा करता है अफसाना उतना ही टाल मटोल करती है।
इसका काम यही है, प्यासे को चाहिए चश्मे के किनारे ले जाया जाए। अफसाना की नजर में मेहरदाद इतना ज्यादा भी प्यासा नहीं है।
इस अरसे में अफसाना ने किसी कॉल नहीं की, उसे भी किसी ने कॉल नहीं की। मैं कहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि उस्ताद शम्स का वजूद ही ना हो।
तुम्हें यकीन है इसके तमाम राबता नंबरों को चेक किया तुमने?
हाँ, दो बार।
तुम्हें यकीन है कि वो पब्लिक टेलीफोन लाइनों का भी इस्तेमाल नहीं करती है?
एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ है।
कभी भी नहीं? इस सूरत में इम्कान पाए जाते हैं कि इनके दरमियान कोई खुफिया मुलाकात हुई हो, या टेलीफोन करना मना हो। इसे यकीन हो जाना चाहिए कि मेहरदाद तैयार है।
तैयार है क्या मतलब है?
मतलब यह है कि जब मेहरदाद शम्स को देखे तो ये सोचे कि दुनिया इसके हवाले की गई है।
मेहरदाद कल सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा।
अफसाना इसके साथ रिश्ते को खत्म नहीं करेगी, शायद इसी वजह से वो टाल रही है जब तक मेहरदाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए।
तो फिर इस तरह अफसाना हॉस्पिटल में बीज बोती है और हॉस्पिटल से बाहर फसल काटती है। नहीं तो शायद वो लोग उसकी हकीकत जान चुके होते।
ये अफसाना की इंश्योरेंस का क्या हुआ?
उसकी माँ के इंश्योरेंस लिस्ट में शामिल कर दिया है।
मेहरदाद आ गया। लेकिन अफसाना की कोई खबर नहीं है।
गया लेकिन उसके साथ कोई नहीं है।
इस तरह करीब जाओ कि उसको शक ना हो। बिल्कुल
कहां रह गई थी?
ठीक हो?
उस्ताद कहां है?
नहीं आए।
नहीं आए क्या मतलब? नहीं है, मुझे डिस्चार्ज हुए 3 दिन हो गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं उन्हें अच्छा लगाऊं? क्या इस तरह अच्छा लगाऊं?
खामोश चुप रहो।
पहले से ही मुझे तुम पे एतबार नहीं करना चाहिए।
मेहरदाद, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। वो आना चाहते थे लेकिन नहीं हो सका।
नहीं हो सका क्या मतलब है कि नहीं हो सका?
मेरा कसूर था।
तुमने उनसे कहा कि ना?
नहीं भाई, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उनको बता दिया कि तुमने क्या कहा है।
क्या कहा है मैंने? मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने उनसे कहा कि जब मेहरदाद को पता चला कि आपने हामी भर ली है उसे मुलाकात करने की, तो वो बहुत खुश हुआ।
तो
फिर मेरे मुंह से निकल गया कि
क्या?
मैंने उनसे कहा कि
जब मेहरदाद को पता चला कि फूलों की मार्केट में मिलना है तो उसको बहुत बुरा लगा।
क्यों वहाँ? लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। बाद में उन्होंने कहा कि मेहरदाद तैयार नहीं है।
मैं तैयार हूँ? कैसे कहूँ कि मैं तैयार हूँ?
उन्होंने कहा कि कौन सी जगह फूलों की मार्केट से ज्यादा बेहतर है जिंदगी के आगाज के लिए।
उन्होंने कहा कि अगर मेहरदाद तैयार होता तो वो चूचरा नहीं करता।
सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी राय बता दी है ना?
नहीं, इसलिए कि तुमने अपने आप पर एतमाद नहीं किया। तुम्हें एतमाद करना सीखना चाहिए। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें सूरज पर ईमान हासिल करना होगा ताकि तुम उसे देख सको।
जाओ अपना काम करो।
वो गुनाह का एहसास पैदा कर रही है। वो चाहती है कि मेहरदाद सोचने के लायक ना रहे।
मेहरदाद, मेहरदाद एक मिनट रुको, सब्र करो, इधर आओ।
इनको देखो, रुक जाओ मेहरदाद, इनको देखो, रुको, रुक जाओ, इनको देखो, ये देखो, ये लो पकड़ो इनको, और भी हैं, पकड़ो, ये सारे पैम्फलेट्स उस्ताद ने दिया है।
उन्होंने कहा इनसे मिलने से पहले इनका मुताला करो।
ये चीजें इसको दे रही है ताकि राह हमवार हो सके। इस तरह के पैम्फलेट मुताले का अनोखा अंदाज है।
ये देखो, ये बहुत अच्छी निशानी है, इसका मतलब ये है कि उम्मीद है। तुम्हें पता है कितना टाइम लगा था कि इस लायक बन सकूं कि इनमें से एक मेरे पास भी हो?
ये उस्ताद ने दिया है?
हाँ, उन्होंने कहा कि जरूरी है कि मेहरदाद जरा अपने आप को देखे। एक बार मुझे भी एक आईना दिया था तो उन्होंने यही सब बातें कही थी।
अपनी शक्ल मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, जितना मैं ज्यादा देखता हूँ उतनी ही ज्यादा हालत खराब होती है।
तुम्हें हक हासिल है, अभी एक हफ्ते भी तुम्हारे खुदकुशी से नहीं गुजरा है।
वो तमाम बातें जिनकी खातिर मैंने खुदकुशी की थी अभी अपनी जगह पर है।
तुम कामयाब हो सकते हो मेहरदाद, मैं पूरी तरह से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। इनको पढ़ लो, इनसे तुम्हें मदद मिलेगी।
ठीक है, खुदा हाफिज़।
मेहरदाद का पीछा करो।
टारगेट का क्या करें?
साये की तरह उसके साथ रहो।
ठीक है सर।
वो चाहती है कि इस काम को अंजाम दे, लेकिन फिलहाल टाल रही है वो मेहरदाद को अपनी पहली वाली पोजीशन पे। वो उसे पहले वाली पोजीशन में लाना चाहती है। अब इसके बाद मेहरदाद मजबूर है कि सिर्फ ऐसी चीजें पढ़े जो फिर पे चाहते हैं। फिलहाल तो उनको दो राहों के दरमियान खड़ा करके रखती है, खौफ और उम्मीद के दरमियान।
हेलो
डॉक्टर हावर, इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर हावर, इमरजेंसी वार्ड।
पागल हो गए हो? रुको मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर, एक घंटे में आऊंगी।
ठीक है,
कुछ हुआ क्या?
नहीं, कोई खास बात नहीं।
वो ऊपर जा रही है।
टेलीफोन मेहरदाद का था।
बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो?
बच्चों जैसी हरकतें नहीं, उस शाम से तो कहा था ना कि खुद को देख लो। कोई फर्क नहीं पड़ा, दुनिया में वही गलाजत है जो पहले थी। मैंने कहा यहाँ हूँ ताकि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूँ, और अब खुदा हाफिज़।
मेहरगाज
मुझे हाथ मत लगाओ।
फिलहाल तुम लोग मुदाखला ना करो जब तक ये कि लोग जमा ना हो जाएं।
अगर लोग जमा हो जाएं तो हम खुद पुलिस को फोन करेंगे ताकि वो आके अमली इकदाम करे।
तुमने इतनी सारी बातें की है मेहरगाज, तो तुम्हारा ईमान कहाँ है? इतना लंबा रास्ता तुमने तय किया है, मैं अभी भी इस वक्त फोन करती हूँ, तुम सिर्फ पुरसकून रहो। तुम बस परेशान मत हो, तुम्हारे अपने सामने उन्हें फोन करती हूँ। देखो देखो मैं फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो सर, मुझे पता है कि मैंने गलत मौके पर फोन किया है, इसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बहुत मुझसे बदतर है, मैं इल्तजा करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा वो तुमसे मिलेंगे।
कब?
कल सुबह 7 बजे तोचाल केबल कार के स्टेशन नंबर 2 पर। एक क्रीम कलर का बैग उनके साथ में होगा, वो पेंटिंग जो आईने पर थी बैग पर होगी, वही दरख्त वही सूरज। ठीक है, अब तुम पुरसकून रहो, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ।
हम मेहरदाद के साथ जाते हैं, चलो।
किसी से उसने कोई बात नहीं की, फोन बंद था उसका।
एक ऐसे इसने ड्रामा रचाया ताकि मेहरदाद को राजी करे, ताकि वो हरदमी छोड़ दे। तुम लोग इसी के ताकों में रहो।
किसी का कॉल नहीं की अब तक उसने,
शायद करे भी ना।
इस अरसे में यह पहली बार है कि वो इस दुकान में जा रही है।
इम्कान पाया जाता है कि राबता कर यहीं पर मौजूद हो। तुम दुकान के मामले की तह तक पहुंचो। राबता कर बेकरी है।
मुलाकात की जगह और टाइम पहले से मालूम है।
मेहरदाद को भी मुलाकात की जगह का वो पता है?
तो फिर बिलाकर हमारी आंखें उस्ताद शम्स के जमाल के दीदार के रोशन हो जाएंगी।
मैंने पता लगाया है, बेकरी की दुकान के अंदर से अभी तक किसी ने कोई कॉल नहीं की।
मेहरदाद का ताकुब करते हुए हम एक बाग तक पहुंच जाएंगे।
कॉल नहीं की है।